तो आप लोग चैतन्य चरितमृत पाठ कर रहे थे जब मैं नहीं था यहाँ, कोई एकदम नहीं। तो मध्य लीला 15 अध्याय तक मैं पाठ किया था पहले, तो मैं अब 16 अध्याय से आज पाठ शुरू करूंगा। अध्याय 16, महाप्रभु द्वारा वृंदावन जाने की चेष्टा। महाप्रभु द्वारा वृंदावन जाने की चेष्टा। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने अमृत प्रवाह भाष्य में इस अध्याय का सारांश इस प्रकार दिया है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन जाने की इच्छा प्रकट की तो रामानंद राय तथा सार्वभौम भट्टाचार्य ने अपरोक्षतः उनके व्यवधान डाले। जथा समय बंगाल के सारे भक्त तीसरे वर्ष जगन्नाथपुरी देखने आए। इस बार वैष्णवों की पत्नियां अपने साथ तरह तरह के भोजन लाई थी, क्योंकि वे जगन्नाथपुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रित करने के विचार से आए थी। जब भक्तगण आ गए तो महाप्रभु ने उन्हें फूलों की मालाएं आशीर्वाद स्वरूप भेजी। उस वर्ष भी गुंडीचा मंदिर की सफाई की गई और जब चतुर्मास से बीत गया तो सारे भक्त बंगाल वापस चले गए। महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को प्रतिवर्ष नीलाचल आने से मना किया। कुलीन ग्राम के वासियों द्वारा प्रश्न किए जाने पर महाप्रभु ने पुनः वैष्णव के लक्षण कह सुनाए। विद्यानिधि भी जगन्नाथपुरी आए और उन्होंने ओरन षष्ठी उत्सव देखा। जब भक्तों ने महाप्रभु को विदाई दी तो महाप्रभु वृंदावन जाने के लिए दृढ़ संकल्प थे और विजयादशमी के दिन वे चल पड़े। महाराज प्रताप रुद्र ने श्री चैतन्य महाप्रभु की वृंदावन यात्रा के लिए अनेक प्रकार के प्रबंध किए। जब महाप्रभु ने चित्रपला नदी पार कर ली तो रामानंद राय, मर्दराज तथा हरिचंदन अनेक साथ साथ गए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने गदाधर पंडित से अनुरोध किया कि वे नीलाचल जाए, किंतु उन्होंने इस आदेश का पालन नहीं किया। महाप्रभु ने पुनः कटक पहुंचकर गदाधर पंडित से नीलाचल वापस जाने के लिए अनुरोध किया और भद्रक पहुंचकर रामानंद राय को भी विदा कर दिया। इसके बाद महाप्रभु ने ओडिशा की सीमा पार की और नाव से पानीहाटी आ पहुंचे। उसके बाद वे राघव पंडित के घर गए, वहां से वे कुमारहट्ट गए और अंत में कुलिया गए, जहां कई अपराधियों के क्षमादान दिया। वहां से वे राम के लिए आए, जहां श्री रूप और सनातन को देखा तथा उन्हें अपने प्रधान शिष्य के रूप में स्वीकार किया। राम के लिए से लौटते समय उनकी भेंट रघुनाथ दास से हुई, जिन्हें उपदेश देकर घर वापस भेज दिया। तत्पश्चात महाप्रभु नीलाचल लौट आए और किसी साथी को लिए बिना ही वृंदावन जाने की योजना बनाने लगे। गौर दानं गौर मेघः सिंचन स्वालोक नामृतै भवाग्नि दग्ध जनता विरुधः समजीवयत। श्री चैतन्य महाप्रभु रूपी बादल ने अपनी दृष्टि रूपी अमृत से गौर देश के उद्यान को सींचा और उन लोगों को जीवन प्रदान किया जो लताओं तथा वृक्ष की भांति संसार की दावाग्नि से जल रहे थे। ये उपमा बहुत सुंदर है। गौर दानं गौर मेघः गौर देश के साथ एक उद्यान के तुलना की गया। और चैतन्य महाप्रभु गौर मेघः सिंचन स्वालोक नामृतै, उन्होंने अपने दृष्टि रूप अमृत को डालने लगे। अपने दृष्टि रूपी अमृत से गौड़ देश के उद्यान को सींचा और लोगों को जीवन प्रदान किया। और प्रदान किए क्या जो लताओं तथा वृक्ष की भांति संसार की दावाग्नि से जल रही थी। तो भगवत कृपा से ये संसार रूपी दावानल का जो ताप है वो ताप का निवृत्ति होगा। संसार दावा नलली ढलो का त्राणाय कारुण्य घना घनात्यम। घना घनात्यम का मतलब बादल। जब दावानल जलता है तो सब कुछ जल के खाक हो जाता है। सब जलन से क्या होता है, ताप से जलते हैं। जलन का मतलब होता है जलने से कष्ट होता है। जैसे वृक्ष लता जब धूप बहुत तेज होता है तो वो भी सूख जाता है, बल्कि जब बारिश, जब नभ में बादल आता है, बारिश बरसता है तो सब शांत हो जाता है, उसका ताप का निवृत्ति होता है। वैसे हम लोग भी ये संसार रूप दावानल में दग्ध हो रहे हैं, जल रहे, बल्कि भगवान की कृपा रूप बारिश जब बरसता है तो उस दावानल का दावानल बूझ जाता है, अर्थात सारे क्लेशों का निवृत्ति हो जाता है। जय जय गौड़चंद्र जय नित्यानंद जयाद्वैत चंद्र जय गौड़ भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, अद्वैत चंद्र की जय हो तथा महाप्रभु के समस्त भक्त की जय हो। प्रभुर होइल इच्छा जाइते वृंदावन सुनिया प्रताप रुद्र होइल विमान। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन जाने का निश्चय किया तो महाराज प्रताप रुद्र ये समाचार सुनकर अत्यंत खिन्न हो उठे। सार्वभौम रामानंद आनी दुई जन दुहाके कहेन राजा विनय वचन। अतएव राजा ने सार्वभौम भट्टाचार्य तथा रामानंद राय को बुलवा भेजा और उनसे विनित शब्द कहे। नीलाद्रि छाड़ी प्रभुर मन अन्यत्र जाइते तोमरा करह यत्न ताहारे राखिते। कृपा करके श्री चैतन्य महाप्रभु को जगन्नाथ पुरी में ही रखने का प्रयास करें, क्योंकि अब वे अन्यत्र जाने की सोच रहे हैं। ताहा बिना यही राज्य मोरे नाही भाई गोसाई राखीते करो हो नाना उपाय। श्री चैतन्य महाप्रभु के बिना मेरा ये साम्राज्य मुझे अच्छा नहीं लग रहा, अतवेव ऐसा उपाय करे कि महाप्रभु इन्हें रुके रहे। रामानंद सार्वभौम दुई जन स्थाने तबे युक्ति करे प्रभु जाबो वृंदावने। इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय तथा सार्वभौम से परामर्श किया, मैं वृंदावन जाऊंगा। दुहे कहे रथ यात्रा करो दर्शन कार्तिक आइले तबे करिह गमन। रामानंद राय तथा सार्वभौम भट्टाचार्य ने महाप्रभु से प्रार्थना की कि वे सर्वप्रथम रथ यात्रा उत्सव मना ले, तब कार्तिक मास आने पर वृंदावन जाए। कार्तिक आइले कहे एवे महाशीत दोल यात्रा देखी जाओ यही भालो रीत। किंतु जब कार्तिक मास आया तो दोनों ने महाप्रभु से कहा, अब बहुत जाड़ा पड़ रहा है, अच्छा हो यदि आप डोल यात्रा उत्सव देखकर जाएं, ये अत्युत्तम रहेगा। आजी काली कोरी उठाए विविध उपाय, जाइते सम्मति न दाए विच्छेदेर भय। इस तरह वे दोनों इस विचार से कि महाप्रभु को वृंदावन जाने की अनुमति न देना पड़े, अनेक व्यवधान उपस्थित करते रहे। वे ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि वे उनके बिछोहों से भयभीत थे। यद्यपि स्वतंत्र प्रभु नहि निवारण, भक्त इच्छा बिना प्रभु ना करे गमन। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वतंत्र है और उन्हें रोग पाने में कोई समर्थ नहीं है, किंतु तो भी वे अपने भक्तों की अनुमति के बिना नहीं गए। तृतीय बत्सरे सब गौरेर भक्तगण, मिला चले चलते सवार हईल मन। तीसरे वर्ष भी बंगाल के सारे भक्त पुनः जगन्नाथपुरी जाना चाहते थे। सबे मिली गेला अद्वैत आचार्यर पाशे, प्रभु देखिते आचार्य चलिला उल्लासे। सारे बंगाली भक्त अद्वैत आचार्य के पास आए और अद्वैत आचार्य अत्यंत उल्लासपूर्वक श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने जगन्नाथपुरी पुरी के लिए रवाना हो गए। यद्यपि प्रभुर आज्ञा गौरेते रोहिते, नित्यानंद प्रभु के प्रेम भक्ति प्रकाशिते। तथापि चलिला महाप्रभुरे देखिते, नित्यानंदेर प्रेम चेष्टा के पारे बुझिते। यद्यपि महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु से बंगाल में रुककर भगवत प्रेम का विस्तार करने के लिए कहा था, लेकिन नित्यानंद प्रभु महाप्रभु का दर्शन करने के लिए रवाना हो गए। भला नित्यानंद के प्रेम भाव को कौन समझ सकता है। आचार्य रत्न विद्यानिधि श्रीवास रामाय, वासुदेव मुरारी गोविंद आदि तीन भाई। राघव पंडित निज झाली सजाइया, कुलीन ग्रामवासी चले पट्ट दड़ी लइया। आचार्य रत्न विद्यानिधि श्रीवास रामाय, वासुदेव मुरारी गोविंद तथा उसके दो भाई एवं पंडित राघव पंडित समेत नवद्वीप के सारे भक्तजन अपने अपने चुने हुए भोजन के झोले लेकर चल पड़े। कुलीन ग्राम के निवासी भी रेशमी डोरे लेकर चल पड़े। खंडवासी नरहरि श्री रघुनंदन, सर्वभक्त चलितार के करे गणन। खंड ग्राम के निवासी नरहरि तथा श्री रघुनंदन एवं अन्य अनेक भक्त भी रवाना हो पड़े। भला उनकी गिनती कौन कर सकता है। शिवानंद सेन करे घाटी समाधान, सवारे पालन करे सुखे लइया जान। शिवानंद सेन पर टोली का भार था। उन्होंने कर वसूले जाने वाले स्थानों पर कर चुकाए जाने की व्यवस्था की। उन्होंने सारे भक्तों की निगरानी का जिम्मा ले रखा था और उनके साथ सुखपूर्वक यात्रा कर रहे थे। सवार सर्व कार्य करें दैन बासस्थान, शिवानंद जाने उड़िया पथेर संधान। शिवानंद सेन भक्तों की सभी आवश्यकताओं को पूरी करते। विशेष रूप से उनके रहने के लिए कमरों की व्यवस्था की और वे ओडिशा जाने के मार्ग जानते थे। से बत्सर प्रभु देखिते सब ठाकुरानी, चलिला आचार्य संगे अच्युत जननी। उस वर्ष भक्तों की पत्नियां ठाकुरानियां भी महाप्रभु का दर्शन करने गई। अच्युतानंद की माता सीता देवी अद्वैत आचार्य के साथ गए। श्रीवास पंडित संगे चलिला मालिनी, शिवानंद संगे चले ताहारु गृहिणी। शिवाश पंडित अपनी पत्नी मालिनी को ले गए और शिवानंद सेन की पत्नी भी अपने पति के साथ गए। शिवानंदेर बालक नाम चैतन्य दास, देह चलिया प्रभुरे देखिते उल्लास। शिवानंद सेन का पुत्र चैतन्य दास भी परम प्रसन्नता पूर्वक महाप्रभु को देखने की इच्छा से उन सबों के साथ हो लिया। आचार्य रत्न संगे चले ताहार गृहिणी, ताहार प्रेमेर कथा कहिते न जानी। चंद्रशेखर आचार्य रत्न की पत्नी भी गई। महाप्रभु के प्रति चंद्रशेखर के प्रेम की उदात्तता का वर्णन मेरे बूते की बात नहीं है, मेरे बूते की बात नहीं है। सब ठाकुरानी महाप्रभु के भिक्षा दें, प्रभुर नाना प्रिय द्रव्य नीलघर हईते। भक्तों की पत्नियां महाप्रभु को तरह तरह का भोजन भेंट करने के लिए अपने अपने घरों से महाप्रभु की मनपसंद वस्तुएं लेती आई थी। शिवानंद सेन करे सब समाधान, घाटियाल प्रबोधि दैन सवारे वासस्थान। जैसा कहा जा चुका है, शिवानंद सेन टोली की आवश्यकताओं का प्रबंध करते थे। विशिष्टया वे कर वसूल करने वाले व्यक्तियों को शांत करते और एक के लिए विश्राम स्थल ढूंढते थे और हर एक के लिए विश्राम स्थल ढूंढते थे। भक्ष दिया करें सवार सर्वत्र पालने, परम आनंदे जान प्रभुर दर्शने। शिवानंद सेन सभी भक्तों को भोजन देते थे और रास्ते भर उनकी देख रेख करते थे। इस तरह वे परम प्रसन्नता पूर्वक श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने जगन्नाथपुरी गए। रेमुनाय आशिया कहिल गोपीनाथ दर्शन, आचार्य कहिल ताहा कीर्तन नर्तन। जब वे रेमुना आ गए तो सारे लोग गोपीनाथ का दर्शन करने गए। जब मंदिर में अद्वैत आचार्य ने नाचा और गाया, नित्यानंदेर परिचय सब सेवक सने, बहुत सम्मान आशी कोइलो सेवक गाने। मंदिर के सारे पुजारी नित्यानंद प्रभु से पहले ही परिचित थे, अतएव उन्होंने उनका बहुत सम्मान किया। श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत के और वृंदावन जाने का, दक्षिण भारत से लौट आने के पश्चात कुछ समय जगन्नाथ पुरी में ठहरे। महाप्रभु चाहते थे कि वहाँ से ही चले जाए, क्योंकि सन्यासी का धर्म है पर्यटन, परिप्राजक, चलते रहना, जगह जगह तीर्थ स्थान में भ्रमण करना। सन्यासी के लिए एक जगह रहना ठीक नहीं, ज़्यादा दिन तक सन्यासी का काम है। तो महाप्रभु आए थे जगन्नाथ पुरी में वापस, और आने के पश्चात कुछ दिन वहाँ ठहरे, और जब उन्होंने वृंदावन जाने का इच्छा प्रकाश किया और महाराज प्रताप रुद्र को जो जब ये खबर मिला तो उन्होंने बहुत ही विमर्श हो गए। उन्होंने नहीं चाहते थे कि महाप्रभु जगन्नाथ पुरी से और कहीं चले जाए। इसलिए प्रताप रुद्र ने, राजा ने रामानंद राय और सार्वभौम भट्टाचार्य को बुलाया और उनको बताया, मैं सुना चैतन्य महाप्रभु यहाँ से चले जाने का आयोजन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। तो किसी तरह उनको रोकना, क्योंकि उन्होंने अगर चले जाएंगे तो हम सब का स्थिति बहुत खराब होगा, हम जी नहीं पाएंगे। महाप्रभु के प्रति उनका प्रेम इतना ही गहरा था कि उन्होंने नहीं चाहते थे कि महाप्रभु वहां से कुछ दिन के लिए भी चले गए, और उनका मन में ये भी एक उद्वेग था, एक शंका था कि अगर महाप्रभु निकल गए यहाँ से, चले गए, तो शायद महाप्रभु और वापस नहीं आएंगे। इसलिए प्रताप रुद्र ने इतना दुखी, इतना दुखी हो गए और उनका मन में ये संदेह आ गया, शोक आ गया। तब सार्वभौम भट्टाचार्य और रामानंद राय ने, जब महाप्रभु बोला कि मैं अब वृंदावन जाने का इच्छा कर रहा हूँ और जब उन्होंने बताया तो उन्होंने बोला देखिए सामने तो चातुर्मास, सामने रथ यात्रा है, अब रथ यात्रा तक ठहर जाइए। तो महाप्रभु रथ यात्रा तक ठहरा, तो उसके बाद जब जाने का इच्छा प्रकाश किया तो बोला कि अब तो बहुत बहुत जाड़ा है, बहुत ठंडा है, तो इस समय आपको भ्रमण करना कठिन होगा, तकलीफ होगा, तो और कुछ दिन के लिए आप ऐसे ठहर जाए, आप ठहर जाए। तो ऐसे जब भी महाप्रभु जाना चाहते थे उन्होंने किसी ना किसी बहाना से उनको रोक लिया। तो ऐसे कोई साल गुजर गया, 3 साल गुजर गया, महाप्रभु जा नहीं। तब उन्होंने, उसके बाद महाप्रभु जगन्नाथ पुरी से गए। अच्छा, इसके पहले, निकलने के पहले इसका वर्णन जो हो रहा है, हर साल बंगाल के भक्त लोग आते थे महाप्रभु के दर्शन के लिए जगन्नाथ पुरी में रथ यात्रा के समय। रथ यात्रा का मतलब तो आप सबको पता है, जगन्नाथ ये सामने आने वाला है, 4 जुलाई इस साल रथ यात्रा होने वाला है, तो हमारा रथ तो बन रहा है, तो रथ से भगवान द्वारका छोड़कर, जब भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में गए तो वहाँ भक्तों के साथ उनका साक्षात हुआ, वृंदावन के भक्त लोगों के साथ, और तब वृंदावन के भक्त लोग उनके रथ पकड़कर उनको रथ वृंदावन की ओर ले गए। तो ये जो लीला है, इस लीला का ही पुनरावृत्ति हो रहा है, हर साल ये होता है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु को दर्शन करने के लिए, रथ यात्रा को उत्सव में अंश ग्रहण करने के लिए बहुत सारे भक्त लोग आते थे बंगाल से हर साल। तो वैसे जब भक्त लोग वहाँ आया तो उनके साथ महाप्रभु को कैसा लेन देन हो रहा था, भाव का, हार्दिक भावना का चर्चा हो रहा था, इसका एक्सचेंज हो रहा था, विनिमय हो रहा था, इसका वर्णन ये सारे ग्रंथ में है। भक्तों के साथ भगवान का प्रेम का संपर्क का वर्णन, तो भक्त लोग जब आए तो महाप्रभु कैसे उनको ग्रहण किया, राजा भी उनको बहुत प्यार करते थे, बल्कि बाद में महाप्रभु निकल गए वृंदावन जाने के लिए, वृंदावन से फिर जगन्नाथ पुरी वापस आ गए। ऐसे भक्तों के साथ भगवान का प्यार का संपर्क का वर्णन होता है ये शास्त्र में। धर्म का चार प्रकाश है, चार मार्ग है। हाँ नहीं, चार मार्ग हैं, वो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये इसको चार चतुर्वर्ग कहा जाता है। शास्त्र विधि का पालन है धर्म। शास्त्र में जो निर्देश दिया गया है उस निर्देश को पालन करने से धर्म का आचरण होता है। धर्म आचरण से पुण्य प्राप्ति होता है। ये पुण्य है अर्थ, जिस अर्थ के द्वारा काम या मन कामना का, मन को जो चाहना है उसको प्राप्ति होती है। धर्म अर्थ काम, काम अर्थात इस भौतिक जगत में भोग का जो इच्छा, चेष्टा, प्रयास, बल्कि भोग करने के पश्चात जब लोग देखते हैं कि भोग करने से भी सुख नहीं मिल रहा है, कितना भी हम भोग करें उससे हमारा जो चाहना जो है सुख नहीं मिल रहा। सुख मिलता है कुछ समय के लिए, बल्कि ये सुख जो है ये सुख नाशवान है। ये सुख दुख का पूर्ण निवृत्ति नहीं, सुख के पश्चात दुख फिर आ जाता है। तो सारे दुख का नाश करने के लिए उन्होंने सोचते हैं कि ये भौतिक जगत ही दुख का कारण है, तो अगर हम इस भौतिक जगत से निकल सकते हैं तो हमें और दुख या कष्ट नहीं रहेगा, केवल आनंद प्राप्ति। तो इस प्रयास को मुक्ति कहा जाता है, मुक्ति, इस भौतिक जगत का बंधन से छुटकारा। ये भौतिक जगत दुखालयम अश्वाशतम, दुख के आलय और अशाश्वत अर्थात अनित्य है। तो ये भौतिक जगत में हम दुख ही प्राप्त हो रहे हैं, कभी कभी सुख मिल रहा है, बल्कि जैसे दिन के बाद रात्रि आता है वैसे ही सुख के पश्चात दुख आता है, चाहे हम दुख चाहे या ना चाहे। तो ये आत्यंतिक दुख निवृत्ति के लिए उन्होंने मुक्ति कामना करते हैं। बल्कि ये चतुर्वर्ग अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष अर्थ या मुक्ति के भी परे है पंचम पुरुषार्थ। पंचम पुरुषार्थ मतलब चार के बाद क्या आता है, पांच। जो तो ये चार पीढ़ी के पश्चात, ये जो पीढ़ी है, चार पीढ़ियां हैं, धर्म है प्राथमिक पीढ़ी, उसके बाद अर्थ काम मोक्ष। तो ये चार पीढ़ी के बाद, चतुर्वर्ग के बाद है पंचम पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का मतलब है जीवन का अंतिम उद्देश्य। जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है, जीवन का अंतिम उद्देश्य जो है वो मुक्ति के भी परे है। मुक्ति है, मुक्ति से ठीक है छुटकारा मिल गए हैं, बल्कि छुटकारा मिलने के पश्चात क्या हो। जैसे कैदी कारागार में दंड भोग रहा, कारागार में कैदी को सजा मिल रहा है। सजा मिलने से क्या होता है? सजा मिलने से मजा होता है? सजा मिलने से कष्ट होता है, दंड होता है, मिलता है। कैदियों को दंड मिल रहा है। तो कैद खाना से जब वो मुक्त हो जाता है तब उसका दंड नहीं मिल रहा है, परंतु मुक्ति के पश्चात क्या होगा? मुक्ति के पश्चात भी कुछ करना है। कैदी जब कैद खाना से निकल आता है, आकर उसको नौकरी ढूंढना पड़ता है, क्योंकि कार्य किए बिना कोई भी नहीं रह सकता। कार्य सबको ही करना पड़ता है। नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। नहीं कश्चित क्षणम अपि, क्षणम मतलब एक क्षण भी, पल के लिए भी, पल भर भी हम ना कार्य किए बिना रह सकते हैं, क्योंकि आत्मा का वृत्ति है कार्य। तो ये कार्य दो प्रकार का होता है, एक है विकर्म और दूसरा है कर्म। विकर्म का मतलब है गलत काम। गलत काम करने से क्या होगा? गलत काम करने से सजा मिलेगी। और सही काम करने से क्या होगा? सही काम करने से इनाम मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा। और ये सही काम क्या है, सही कार्य क्या है? सही कार्य है जत करोसी जद स्नासी जत जुहोसी ददासी जत जत तपस्योषी कौन्तेया तत् पुरुष मदर्पणम। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं जत करोसी, जो कुछ तुम करते हो, जद अस्नासी जो तुम खाते हो, जद जूहोसी जो तुम यज्ञ में अर्पण करते हो, ददासी जत जो तुम दान देते हो, और जत तपस्सी जो तपस्या तुम करते हो, तत्पुरुष वो सारे तुम मद अर्पणम मुझे अर्पण। अर्थात जो कार्य हम करते हैं सारे कार्य भगवान के लिए ही करना चाहिए, भगवान के माध्यम या भगवान के साथ संयुक्त होकर उस कार्य करना चाहिए, भगवान के लिए ही करना चाहिए। केवल कार्य ही नहीं, जत करो से जत अस्नासी, जो खाना जो हम खाते हैं कैसे खाना चाहिए, खाना कैसे चाहिए? भगवान को निवेदन, भगवान को भोग लगा के भगवान के प्रसाद के रूप में वो खाना खाना चाहिए। भगवान के प्रसाद के रूप में खाना खाने से क्या होता? वो प्रसाद से प्रसादे सर्व दुखानाम आनिरस्सो हो जाए, सारे दुख का निवृत्ति हो जाए। भगवान के प्रसाद का, भगवान का प्रसाद का मतलब है भगवान का कृपा, भगवान का कृपा से सारे दुख का निवृत्ति हो जाए, हानि रस हो जाए। तब और कोई क्लेश, कोई नुकसान, हानि, कोई तकलीफ नहीं। तो वैसे खाना भी भगवान के लिए खाना चाहिए, अर्थात पहले भगवान को खिला के भगवान के प्रसाद के रूप में उसके ग्रहण करना चाहिए। भगवान को प्रसाद जब हम ग्रहण, भगवान को निवेदन करके, भगवान को अर्पण करके ही ग्रहण करना। जद जूहोसी यज्ञ जो करते हैं हम, यज्ञ करना मनुष्य के लिए एक आवश्यक कर्तव्य है। यज्ञ का मतलब क्या है? यज्ञ का मतलब जो सुविधाएं हमें मिल रहा है इसके लिए कुछ पेमेंट करना, जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं सारे सुविधाएं, वो कोई किसी ने दे रहा है ना, जो कुछ हमें मिल रहा है, घर में बैठे हैं एक स्विच दबा दिया बस बत्ती जल गए, कैसे जल रहे हैं इसका कोई आयोजन किया होगा, मतलब सबसे पहले ये जल क्यों रहा है बत्ती, इलेक्ट्रिक सप्लाई हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक सप्लाई किसी ने कर रहा है ना, कि इलेक्ट्रिक ऐसे ही मिल रहा है। हम जब देखेंगे उज्जैन शहर का इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट है, ऐसे पानी भी हम जाते हैं रसोई खाना में, जस्ट कल जो टैप्स हैं उसको खोल देने से पानी निकल रहा है, तो इसलिए जो इलेक्ट्रिक मिल रहा है, पानी मिल रहा है, इसके लिए महीने के बाद क्या होता है, एक बिल आता है और वो बिल हमको भरना पड़ता है, अगर बिल नहीं भरेंगे तो क्या होगा, तब सप्लाई बंद हो जाएगा। तो वैसे ही प्रकृति में भी हम देखते हैं, जैसे सूरज किरण दे रहा है, ज्योति दे रहा है, ताप दे रहा है, चंद्रमा हवा पवन अग्नि वायु ये सब सुविधाएं हमें मिल रहा है, अगर हम अगर वायु नहीं रहेगा तो हम श्वास प्लस ले सकेंगे, और श्वास नहीं अगर ले सकेंगे तो हम जीना संभव होगा हमारे लिए? जीने के लिए श्वास लेना पड़ता है, मतलब हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, ऑक्सीजन बिना हम नहीं रह सकते हैं, खाना खाए बिना हम नहीं रह सकते, पानी पिए बिना हम नहीं रह सकते, तो ये पानी खाना वायु हवा ये सब मिल रहा है, किसके कारण मिल रहा है, किसी ने सप्लाई कर रहा है, जैसे हर डिपार्टमेंट का एक एक देवता है, जैसे वायु के हैं पवन देव, पानी के वरुण देव, बारिश के इंद्रदेव, सूर्यदेव, चंद्रदेव, ये सारे जो देवताएं हैं उन्होंने हमें ये सप्लाई कर रहे हैं, तो ये सप्लाई को हम ग्रहण कर रहे हैं, तो इसके लिए कुछ पेमेंट करना होगा, कभी कभी पेमेंट करने का ज़रूरत है, तो ये जो पेमेंट है वो है यज्ञ। यज्ञ से ये देवता सब प्रसन्न होते हैं, उसको यज्ञ भाग मिलता है, यज्ञ का अंश देवताओं को मिलता है। सह यज्ञा प्रजा शिष्टा पूर्ववाचो प्रजा, प्रजा अर्थात मनुष्य की सृष्टि के साथ साथ यज्ञ का भी उत्पत्ति है, और भगवान निर्देश दिए हैं कि ये यज्ञ करके देवताओं और मनुष्य के बीच में एक हार्दिक संपर्क बने, मनुष्य का जो जरूरत है देवताओं ने सप्लाई करते रहे। तो ऐसे हमें सब कुछ मिल रहा है और ये देना है, पेमेंट देना है यज्ञ, बल्कि दूसरे युगों में यज्ञ जो है वो है अग्निहोत्र यज्ञ या अग्निस्टोम यज्ञ, बहुत सारे प्रकार के यज्ञ होता है जिसका वर्णन वेद के कर्म कांड में दिया गया है। मनुष्यों का जैसे पुत्रष्ट यज्ञ, जिसको पुत्र नहीं है वो अगर पुत्र चाहता है तो ये यज्ञ करने से पुत्र मिलता है। वैसे ही धन प्राप्ति के लिए यज्ञ हो सकता है, राजा बनने के लिए यज्ञ बन सकता है, राजसूय यज्ञ या अश्वमेध यज्ञ। बल्कि ये कलियुग में ये सारे यज्ञ संभव नहीं। अश्वमेधम गवालब्धम संन्यास फलपत्रिकम देवरेन सुतुत्पत्ति कौलौ पंच विवर्जयेत। ये पांच प्रकार के कार्य कलियुग में वर्जन किया गया है, नहीं करने का निर्देश दिया गया है। ये अश्वमेध यज्ञ या गोमेध यज्ञ जो है इसको नहीं करना चाहिए। बल्कि बात ये है तो यज्ञ तो क्या हम कैसे करेंगे, यज्ञ अगर नहीं करेंगे तो सप्लाई नहीं मिलेगा। तो यज्ञ तो करना चाहिए। तो कलियुग के लिए एक विशेष यज्ञ है, वो यज्ञ है यज्ञ संकीर्तन प्राय जजन्ति ही सुमेध। हरेर्नाम हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरम। कलियुग में भगवान का नाम कीर्तन ही यज्ञ है, इसका नाम है संकीर्तन यज्ञ। अच्छा, यहां और एक विचार आ रहा है, जैसे उज्जैन में वाटर डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, सारे डिपार्टमेंट है, इसको हमको महीने के बाद हमको बिल देना पड़ता है, भरना पड़ता है। बल्कि वो जो पेमेंट जो लेते हैं डिपार्टमेंट, लेकर क्या करते हैं वो लोग, सरकार को देते हैं। कोई डिपार्टमेंट वो पेमेंट आप सब तो जानते हैं खुद नहीं रख सकता है, सरकार को देना। तो वैसे ही देवताओं ने पेमेंट ले रहे हैं यज्ञ के रूप में, बल्कि वो लोग यज्ञ का जो प्राप्ति है वो खुद नहीं ग्रहण करते, सब भगवान को दे देते। वैसे सरकार को सारे डिपार्टमेंट जितने सारे पेमेंट आता है भेज देता है, और सरकार क्या करते हैं उसको बजट दे देते हैं, तुम्हारा जो प्रयोजन है हम दे देते। तो वैसे एक बहुत सुंदर परिस्थिति का स्थापना हुआ जिसका वर्णन देखिए भगवद गीता का तीसरी अध्याय में कर्मयोग का वर्णन हुआ है, और उसके पश्चात पंचम अध्याय में भी कर्मयोग का ही वर्णन है, दोनों ही ये दो अध्याय ही कर्मयोग। बल्कि ये तृतीय अध्याय में कर्मयोग का प्राथमिक विचार हुआ है और पंचम अध्याय में अंतिम विचार। पंचम अध्याय का वर्णन क्या है, सब कुछ भगवान के लिए ही अर्पण, और भगवान सबको दे रहे हैं। हम भगवान को भगवान के लिए दे रहे, भगवान के लिए निवेदन कर रहे हैं और भगवान हमें दे रहे हैं। जैसे हमारा जितना प्रयोग, जितने सारे प्रयोजन हैं, उसका पूर्ति भगवान कर रहे हैं। भगवान सबको देखभाल कर रहे हैं इस रूप। तो आप सवाल हैं, भगवान हैं? हम अगर सोचेंगे कि भगवान नहीं है तब तो सारे मामला खत्म हो गए। हाँ, तो भगवान को जानना ही जरूरी है। भगवान का दर्शन, भगवान को पहचान तीन स्तर में होता है। बदन्ति तत्त्वविदस्तत्वम् जज ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान की शक्ति। वेरी गुड कार्तिक, बताओ तुम। तुम खड़े होके सबको सुनाओ। मतलब कम किए इसका मतलब क्या है? भगवान को मतलब परम सत्य, वदन्ति तत्त्वपि तत्त्वविदस् तत्त्वम् जज ज्ञानम अद्वयम्। अद्वय का मतलब है जिसका द्वय द्वितीय नहीं है, दूसरा नहीं, एक। और वो कौन है? वदन्ति तत्त्वविदस्, जो तत्त्वविद, जो तत्वज्ञानी है, तत्वज्ञ है, उन्होंने क्या कहते हैं? एक जो अद्वय तत्व है उसका प्रकाश या दर्शन तीन रूप से हो रहा है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान। ब्रह्म परमात्मा और भगवान। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म है जिस शक्ति के द्वारा इस जगत का रचना हुआ, सर्वं खल्लिदं ब्रह्म। सब कुछ ही ब्रह्म है क्योंकि सब कुछ ब्रह्म से ही इसका उत्पत्ति हुआ। ये जो आध्यात्मिक शक्ति है या भगवान का शरीर का जो कांति है, भगवान का देह से निर्गत हुआ जो रश्मि है, रश्मि छटा, वो है ब्रह्म। रश्मि का रूप नहीं, ये जो लाइट है, लाइट का रूप है ना? ये निराकार है। तो ये जो शक्ति जो है ब्रह्म, वो निराकार है। और इस शक्ति से ही इस जगत का निर्माण हुआ है। ब्रह्म से प्रधान महत्तत्व, प्रधान और इस भौतिक जगत के जितने सारे प्रकाश धीरे धीरे, महत्तत्व, प्रधान, अहंकार, बुद्धि, मन, अप, तेज, क्षिति, मरुत, बोम, आकाश, बोम, देन क्षिति, मरुत अर्थात वायु, अग्नि, पानी, मिट्टी, मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश, ये पंच महाभूत, ऐसे इस जगत का निर्माण हुआ है। इस जगत का रचना भगवान कह रहे हैं, आठ उपादान से इस जगत का निर्माण हुआ है। इस जगत का सृष्टि आठ उपादान से, प्रकृति क्रियमानानि, मतलब ये भिन्ना प्रकृति अष्टधा, ये मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार इति अंग में भिन्ना प्रकृति। इस आठ उपादान से ये भिन्ना प्रकृति, इस भौतिक जगत का सृष्टि, बल्कि अपरेयाम इतस्तन्नाम प्रकृति ये जो अपरा प्रकृति, निकृष्ट प्रकृति है, उसके ऊपर और एक उत्तम प्रकृति है, परा प्रकृति। और जीव भूतांग महाबाहो जजेदंग धार्यते जगत, जीव इस उस प्रकृति से, परा प्रकृति से इस भौतिक जगत में आए हैं। हम सब कहाँ से आए हैं? हमारा उत्पत्ति इस भौतिक जगत में हुआ है, ये शरीर का उत्पत्ति भौतिक जगत में हुआ, परंतु आत्मा इस भौतिक जगत का नहीं है। ये आत्मा प्रकृति विद्धि में पराम, भगवान के परा प्रकृति से आत्मा है। तो ये जो ब्रह्म जो है, ये ब्रह्म निराकार है, बल्कि ब्रह्म का जो स्रोत है परम ब्रह्म, परम ब्रह्म है, शक्ति के स्रोत शक्तिमान। शक्ति खुद नहीं रह सकता, शक्ति का उत्पत्ति उसी स्रोत से हो। जैसे इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, बल्कि इलेक्ट्रिसिटी कौन तैयार कर रहा है? इलेक्ट्रिसिटी किसी ने पावर हाउस में जनरेट कर रहा है। तो ऐसे हम भौतिक जगत में भी देखते हैं, जैसे गाड़ी चल रहा है, गाड़ी खुद चल रहा है नहीं, कोई चला रहा है, गाड़ी को ड्राइवर चला रहा है। जब ड्राइवर गाड़ी से निकल जाता है तो गाड़ी चलता है तब। वैसे ही यंत्र रूढ़ानी माया, माया के द्वारा बनाया गया एक यंत्र हम सबको मिला है। वो यंत्र क्या है? वो यंत्र है ये शरीर, और ये शरीर को कौन चला रहा है? आत्मा। जब आत्मा शरीर छोड़ के चला जाता है तो क्या होता है? शरीर का नाश होता है, मृत्यु होता है, तब शरीर नहीं चलता है। जैसे गाड़ी से ड्राइवर निकल जाने से गाड़ी नहीं चलता है, वैसे शरीर से आत्मा निकल जाने से आत्मा भी, शरीर भी निष्क्रिय हो जाता है, शरीर में क्रिया नहीं रहता है। तो ये शरीर में आत्मा है, और ये आत्मा के साथ साथ भगवान भी हैं, परमात्मा के भी। ब्रह्मेति परमात्मे, हर जीव के हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में विराज करते हैं। परमात्मा के रूप में भगवान क्या करते हैं? पहले एक दृष्टिकोण से, जब तक हम भौतिक जगत का बंधन में रहते हैं, तब भगवान परमात्मा के रूप में हमारे कार्य के साक्षी रहते हैं। उपद्रष्टा अनुमंता च, उपद्रष्टा, भगवान देख रहे हैं हम क्या कर रहे हैं। कहाँ से देख रहे हैं? जब भी भगवान बाहर से भी देख रहे हैं, भगवान अंदर से भी देख रहे हैं। तो भगवान से हम कुछ छुपा सकेंगे? सब देख रहे हैं। बल्कि भगवान क्यों हमारे हृदय में बैठे हुए हैं। एक तो हम जो चाहते हैं उसको पूरा करने का अनुमानता अनुमोदन करते हैं। ठीक है, तुम राजा बनना चाहते हो, चलो देखते हैं तुम्हारे पास कितना पैसा है, कितना पुण्य है, तुम एक राज्य खरीद सकोगे। हाँ ठीक है, ज़्यादा रुपया है, ज़्यादा पुण्य है, चलो तुम ज़्यादा राजा बनना चाहते हो तो राजा बन जाओ। तुम अपने पुण्य के द्वारा स्वर्गलोक में जाना चाहते हो, ठीक है, पुण्य अगर काफ़ी है तो चलो स्वर्गलोक में जाने का भी इच्छा पूर्ण हो जाए। बल्कि पुण्य जब खत्म हो जाता है तब क्या होता है, क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकं विशन्ति। पुण्य खत्म हो जाने से फिर हमको इस मर्त्यलोक में मृत्यु लोक में आना, स्वर्गलोक में मृत्यु नहीं होता है। बल्कि जब पुण्य खत्म हो जाता है तो हमको इस मृत्यु लोक में फिर वापस आना पड़ता है। तो ये सब परमात्मा के रूप में भगवान हमें अनुमोदन करते, सैंक्शन करते। और अपने स्वरूप में ये जो परम सत्य हैं, परम तत्व हैं, वो हैं भगवान, भगवान इति शब्द। मैं पहले ये विचार आपको पास रखा था कि जब बाण शब्द का प्रयोग होता है उसमें व्यक्ति का द्योतक होता है, व्यक्ति के पास बाण का मतलब व्यक्ति या पुरुष। बति से क्या होता है, जैसे गुणवान, गुणवान ये शब्द सुनने से हमको क्या मालूम होता है, जिसका गुण है। धनवान, जिसके धन है, जिसके पास धन है। और जब हम बोलते गुणवती तब स्त्री का निर्देश होता है, पुरुष है बाण और स्त्री है पति। तो अच्छा, ये स्त्री और पुरुष व्यक्ति है। ऐसा कभी हो सकता है रूपवती बल्कि उसका रूप नहीं है, कोई हो सकता है, या धनवान बल्कि वो कोई कुछ नहीं है, व्यक्ति नहीं है। जैसे वेद का जो विचार है, हमारे वेद का जो निर्देश है, वेद का जो दर्शन है, उसमें ये सारे विचार बहुत सुंदर रूप से इसका निर्णय हुआ है। जितने हम नज़दीक आएंगे उतना ही हम उनका स्वरूप सही रूप से समझ पाएंगे। जैसे सूरज, हम जब घर से सूरज को देखते हैं, कैसे हम सूरज को दर्शन करते हैं, घर में बैठे हैं, सूरज को दर्शन कैसे होता है, रोशनी के रूप में। जब घर से निकलते हैं तो क्या देखते हैं, सूर्य मंडल देखते हैं। और जब सूर्य मंडल में जब हम पहुंचेंगे तो क्या देखेंगे, तो वहां हमको सूर्यदेव का दर्शन मिलेंगे, वहां सूर्यदेव के पार्षदों हैं। सूर्य मंडल में जैसे इस जगत में, इस पृथ्वी पे हम सब इतने सारे आदमी हैं, सूर्य लोक में भी बहुत सारे व्यक्तियां हैं, बल्कि दूर से नहीं पता चलेगा। जैसे बहुत दूर से हम जब देखते हैं, जैसे आपको ये है, जब स्पेस शटल से जब पिक्चर मिलता है इस पृथ्वी का, तब कैसा लगता है, तब लगता है कि ये पृथ्वी में उज्जैन शहर है, वहाँ से पता लगता है, लगता है कि यहाँ इस्कॉन मंदिर है और मंदिर में हम सब बैठे हैं, लगता है। क्यों? क्योंकि हम बहुत दूर से देख रहे हैं, बल्कि जब नजदीक आ जाते हैं तो सही रूप से हमें दर्शन होता है। जैसे एक ट्रेन, रात को जब हम ट्रेन को देखते हैं दूर से, क्या देखते हैं? हाँ, क्या दूर से क्या देखते हैं? लाइट देखते हैं। दूर से देखते हैं, वो ठीक है, ट्रेन आ रहा है, ट्रेन आ रही है। ट्रेन दूर से, प्लेटफॉर्म में हम खड़े होकर ट्रेन का प्रतीक्षा कर रहे हैं, दिल्ली जाना है। और दूर से हम देखते हैं, पहले क्या देखते हैं? लाइट को देखते हैं। और थोड़ा नजदीक जब आ जाता है तो क्या हम देखते हैं? ट्रेन देखते हैं। और प्लेटफॉर्म में जब आ जाता है और हम जब कमरा में घुसते हैं तो क्या देखते हैं? लोग देखते हैं। तो वैसे ही जब हम बहुत दूर से ये परम सत्व को दर्शन करते हैं, तब उसको ब्रह्म ज्योति के रूप में, निराकार ज्योति के रूप में हम दर्शन करते हैं। जब अपना हृदय में उनको दर्शन करते हैं तो परमात्मा के रूप में दर्शन करते हैं। और उनके पास जाकर जब उनके धाम में उनको दर्शन करते हैं तो कैसे दर्शन करते हैं? भगवान के रूप में। तो ये तीन दर्शन में से सर्वोत्तम क्या है? कौन से दर्शन? भगवत दर्शन। भगवत दर्शन जैसे, इसका भी स्तर का विचार है, वो हम बाद में चर्चा करेंगे। बल्कि सही बात ये है कि भगवत दर्शन तभी होता है, कब, कैसे भगवान को हम दर्शन कर सकते हैं? प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतस सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरम अचिंत गुणस्वरूप गोविंदम आदिपुरुषम। प्रेम रूप अंजन के द्वारा जब हमारे आंखें रंजित हो जाता है तब प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न, प्रेम या भक्ति के द्वारा जब हम दर्शन करते हैं तो कैसे उनको दर्शन हम करते हैं? जंग श्याम सुंदरम, श्याम सुंदर, उनका अंग का कांति है घनश्याम, बादल की भांति श्याम। और श्याम सुंदरम वो रूप, उस रूप, श्याम सुंदर रूप, अचिंत गुण स्वरूपम, अचिंत, जो हमारे चिंता के भी परे है, हमारे कल्पना के भी, हमारे मन की भावना के भी जो परे, जिसको हम धारणा भी हम नहीं प्राप्त हो सकते, अचिंत, अचिंत गुण स्वरूप। तो इस रूप से अर्थात भक्ति के साथ प्रेम रूप आंखों के द्वारा, प्रेम के द्वारा रंजित आंखों के द्वारा हमें भगवान की दर्शन। हरे कृष्णा। तो हम आज 6:30 बजे आए हैं, आरती होने वाला है मंदिर, ठीक है। तो कल पहले हम 5:30 से क्लास दे रहा था, यस 5 बजे, 5 से 5 से डेढ़ घंटा का, डेढ़ घंटा ये एक घंटा 5 से 6, ठीक है। तो अब 5:30 से 6:30, ओके, थैंक यू। और मैं सोच रहा था कि शाम को आरती के बाद मैं कीर्तन भी करूँगा, बल्कि हाँ, मैं आज सोचा मैं थोड़ा थका हुआ हूँ, इसलिए आज नहीं करेंगे कीर्तन, कल से हम।
महाराज की जय।